Bye. جی صاحب پروگرام ایک تو پچھلے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میں نے کہا تھا دو کمرشل اور لگا دو مگر ظالم قوم اٹ ہیپن سر, بڑے بڑے شہروں میں ایسے ہو جایا کرتا ہے. اینی ویز میں نے ایک رپورٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے, اور بہت سے یہودی بہترین لوگ ہیں. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ دس از ناٹ کہ کرسچینٹی جوزم اور اس کے درمیان میں یہ جنگ ہے کولونائزڈ اور جو کلونیل سسٹم کو فیور کرنے والے ہیں یہ ان کے کلونیل جو سلیو میکرز ہیں اور کولونائز کے درمیان یہ ایک جنگ ہے. کولونائزرز آپ کو پتہ ہی ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کی فرانس کی ان لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یہودی کرسچنز اینڈ عیسائی کسی مذہب کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے, کمپیشن, ہم ایک دوسرے کو مانتے بھی ہیں. امریکہ میں ایک بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے, اور یہ پروٹیسٹ ہوئی ہے وہ یہودی جس میں یہودیوں نے باقاعدہ مائک پکڑ کے یہ کہا ہے کہ جیوز سے سیز فائر ناؤ. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں لڑکیاں, مرد, چھوٹی عمر کے, بڑی عمر کے, ہر عمر کے لوگ شامل ہیں. اور یہ سٹاپ ویپنائزنگ دا ورلڈ اس میں یہ تھا, اور یہودیوں نے ہر طریقے سے بیان دیا جیوز فار پیلسٹائن, کہ یہودی جو امریکہ کے رہنے والے ہیں, فری پیلسٹائن, جیوز سے سٹاپ جینوسائیڈ آف پیلسٹینینز, یہ یہودیوں نے کہا ہے, سٹاپ جینوسائیڈ آف پیلسٹینینز, جیوز اگینسٹ جینوسائڈ, کے یہودی جو ہیں, اور یہ اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دس از اے وار فار دی تھرون, وہ کہتے ہیں کیا وار آف تھرونز کیا تھی, شازیہ بتاتی ہے کیا تھی. میں نے وہ اس کی تین بکس بھی تھیں, تین اس کے ایپیسوڈز بھی آئے تھے, یعنی طاقت کے حصول کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی, ان کے درمیان میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی تناؤ نہیں ہے. یس, سوشل میڈیا میں بعض ایجنسیز, بعض لوگ یہ تناؤ جنریٹ کر رہے ہیں جسٹ ہائپ دینے کے لیے, اگنائٹ کرنے کے لیے. اگر ہے تو کولونائزر اور کولونائزڈ کے درمیان یہ وار ہے, یعنی وہ لوگ جو گیم آف تھرونز, ایگزیکٹلی گیم آف تھرونز, میں نے کیا کہا تھا, میں نے بھی کوئی نام دیا تھا, گیم آف تھرونز ہی کہا تھا, اس کے تین ایپیسوڈز آئے تھے, طاقت کی جنگ, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس, نتھنگ ایلس, شاہین کس کے سر کے اوپر بیٹھے گا. مگر امریکہ کے یہودیوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے, پروٹیسٹ کیا ہے, اور پروٹیسٹ کیا ہے. میں نے بھی کہا ہے کہ دیر واز اے وار آف تھرونز, بالکل میں نے یہی کہا ہے, بٹ دس از ناٹ دا جیوش اینڈ دا مسلمز اینڈ دا کرسچنز, دے آر ناٹ فائٹنگ, دیز آر, دس از اے فائٹ بٹوین وہ جو طاقت کے حصول کے لیے یہ کر رہے ہیں, ناٹ ان آر نیم. کیا کمال کی بات ہے کہ یہودی نے لکھی کہ وار ناٹ ان آر نیم, کہ ہمارے نام کے اوپر جنگ مت لڑو. جنگ اگر آپ لڑ رہے ہو تو اپنی طاقت کے حصول کے لیے, خطے میں اپنی طاقت اور اپنی پاور کو منوانے کے لیے تم جنگ لڑ رہے ہو. یس, اٹ از اے بگ, آپ کو پتا ہے جو بائیڈن اپنے سیکنڈ ٹرم کے الیکشن کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں, اینڈ جو بائیڈن ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیں گے, ریزن بینگ کہ ان کے دور میں جو یہ واقعہ ہوا تھا, انہوں نے ایک تو افغانستان کی جنگ کے بارے میں, اور اب وہ کہیں نہ کہیں ایسی فتح کو اپنے حصے لے کے آنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں بے مثال ہو جائیں. میں نے آپ کے ساتھ ڈرا ڈاؤن اتھارٹی کے بارے میں بات کی تھی. ڈرا ڈاؤن اتھارٹی, واٹ از ڈرا ڈاؤن اتھارٹی؟ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ صوابدید یا یہ اپر ہینڈ ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی فیصلہ یک طرفہ کر سکتا ہے, اپنی طرف سے کر سکتا ہے. حالانکہ امریکہ میں کوئی بھی جب فیصلہ ہوتا ہے, اپر ہاؤس, لوور ہاؤس, کانگریس جو ہے اس کو پروو کرتی ہے اور اس کے بعد چلتا ہے. مگر جہاں سٹیٹ کی کہ ڈیفنس کی بات آتی ہے, وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی بات تھوپ سکتا ہے, انفارم, دے جسٹ ہیز ٹو انفارم. पहली बार जब ये हुआ था तो क्लिंटन्स के दौर में ये हुआ था, जिसमें मदद की गई थी इसराइल की ही, और उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में ही दूसरी बार ये हुआ। यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान यूक्रेन की जो मदद की गई, बहुत से मौके ऐसे आए, अराउंड 38 टाइम्स ऐसे मौके आए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कांग्रेस से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपना फैसला करने के बाद कांग्रेस को इन्फॉर्म किया कि हम उनको फौजी मदद दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, मेरा ख्याल 6.2 अरब के करीब। यानी अमेरिका का काम यह था कि इसराइल को एहसास दिलाया जाए कि यस वी आर बिसाइड यू, हम तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का खसूसी इख्तियार है, ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के नाम से ये जाना जाता है। यानी किसी भी बहरानी सूरत हाल के बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट वन साइडेड एक्शन ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इससे पहले 1994 में सदर क्लिंटन की इंतज़ामिया ने यही रशिया की ही मदद, यही इसराइल की ही मदद की थी, और F-16 उनको फ्राहम किए थे। उसके बाद इन्होंने कमेटी को बताया, कहते हैं उस जमाने में जो स्टे जो डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कमेटी को बताया कि ये खसूसी इख्तियार सिर्फ इसराइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। हैमिल्टन ने ये सवाल पूछा कि क्या इससे इसराइल की इजाफी मदद भी हो सकती है, तो जवाब में कहा गया हमें इसकी इजाज़त है, हम अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम उनको मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने, मेरा ख्याल है मैंने कहीं ना कहीं कोई एक गलती की है जिसको मैं अपनी खुद से करेक्शन करना चाहती हूँ। बहरहाल, जब हैमिल्टन से पूछा गया कि इस प्रोग्राम से किन दूसरे ममालिक को इमदाद भेजी, उन्होंने कहा जी किसी को भी नहीं इमदाद भेजी, किसी को भी नहीं इमदाद भेजी, पहली दफ़ा हम इमदाद करने लगे हैं, दैट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर इसराइल। इसराइल को जेट तेरे फ्राहम करने के फैसले के बाद अब आज हालात बदल गए हैं, यूक्रेन की मदद की गई है, एक बार दो बार नहीं 38 टाइम्स। अगेन दुनिया यूनिपोलर थी और यूनिपोलर से दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है, क्योंकि पहले पूरी दुनिया में तिजारत डॉलर के इवज की जाती थी, बट नाउ दे वांट कि अमेरिक, आपको पता है दुबई में इंडियन करेंसी में आप खरीदारी कर सकते हैं, चाइना रशिया से उसकी पैसे में चीज़ ख़रीदारी कर रहा है, इंडिया चाइना से उसके पैसे में ख़रीदारी कर रहा है, तो ये सूरत हाल हो गई है। इसराइल के पास नतन्याहू की जानिब से दी गई इंतकाम लेने की धमकी को अमली जवाब पहनाने और कार्रवाई करने के लिए काफ़ी कुव्वत मौजूद है, जो मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल के रख सकती है। असले के लिहाज से बात करें, मैन पावर के लिहाज से बात करें, और दुनिया का बैकअप की अगर आप बात कर लें, नतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, उन्होंने बारहा ऐलान किया है कि दो रियासती हल अब नाकारा हो चुका है। दो रियासती हक क्या है कि बिल्कुल साहब फलस्तीनियों को गजा के बीच में मुकम्मल आज़ादी हो, रह सकें, और ये 2005 के बाद वो कहते हैं हम इस गलती को दोहराना नहीं चाहते। हमास को शिकस्त हो जाए लेकिन इसे शदीद मुश्किलात के बावजूद मुज़ाहमत के लिए हमास को याद रखा जाएगा कि 1973 के बाद 50 साल के बाद अगेन सेम यौम कपूर के मौके के ऊपर दे डिड एग्जैक्टली सेम। मगर साहब मेरी रिजर्वेशन है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मगर मेरी रिजर्वेशन ये है कि दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस दैट इज मुसाद, इंटरनल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं तो शबाक इनकी दूसरी इंटेलिजेंस कंपनी है, जहां पर कुछ भी नहीं है मुसाद को उस मामले की इंफॉर्मेशन गहराई तक है। क्या हो गया था कि इजिप्ट ने, मिस्र ने बाकायदा उनको इन्फॉर्म किया था कि यस हमास इज प्लानिंग समथिंग, समथिंग इज बिग इज गोइंग टू हैपन, ये कोट एंड कोट्स में दो दिन पहले की खबर है, मगर उन्होंने आंखें क्यों बंद रखी। पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स किया है, मगर पाकिस्तान बेचारा को मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान बेचारे से अपने ही हालात कंट्रोल नहीं होते तो हम दूसरों के हालात कहेंगे। हजबुल्ला का भी जिक्र करना चाहती हूँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा हजबुल्ला के बारे में बात करना नहीं चाहती। سن رہے ہیں پروگرام ساز آواز، میں آپ کے سامنے عارفہ مظفر. طاقت سے مظلوم قوم کی جذبہ مزاحمت کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ کالم ہے ڈاکٹر، یہ ہماری ملیہ لودھی صاحبہ کا. یہ دونوں طرف چل رہا ہے، یہ پاکستان میں بھی چلے گا اور یہ دنیا میں بھی چلے گا. اگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اگر اسرائیل کے پاس طاقت ہے، اس کا بیک اپ کرنے کے لیے پورا کا پورا ویسٹ موجود ہے، تمام کالونائزرز ان کے پیچھے موجود ہیں، تو طاقت سے وہ کہتے ہیں کہ جذبے مزاحمت کے جذبے کو دبا نہیں سکتے. آف کورس اف گو ٹو پاکستان، وہاں پر بھی آپ طاقت کے جذبے سے، طاقت کے ذریعے جو مزاحمت ہے اس کو روک نہیں سکتے. دیٹ از اے پولیٹیکل سیناریو ان پاکستان. آپ امیجن کیجئے گا کہ دنیا میں جنگ اگر ایک ملک اور کچھ ممالک کے کہنے سے ہو سکتی ہے، تو پاکستان تو تیسری دنیا کا ملک ہے. دے نیڈ پاکستان، دے نیڈ دیٹ سرفیس، دے نیڈ دیٹ گراؤنڈ. اسرائیل فلسطین تنازع اور غزہ میں جنگ ایک ایسا لاوا جو طویل عرصے سے پک رہا تھا. فلسطین پر سات دہائیوں کے وحشیانہ اسرائیلی قبضے کے باعث حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، سات دہائیاں یعنی 70 سال سے. اسرائیل جو ہمیشہ ہی سلطنت فلسطینیوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے، فلسطینیوں کے خلاف شدید جاریہ آبادکاروں کی جانب سے تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، مقدس اسلامی مقامات کی بے حرمتی، اور جدید تاریخ میں نسل پرستی کی بدترین جینوسائڈ کی ہم بات کرتے ہیں. اس مقدس اسلامی مقامات کا جب ذکر کرتے ہیں، میں نے وہ خبر اس دن کور نہیں کی تھی، یہ پچھلے سیٹرڈے کو جب حماس کا فرائیڈے سیٹرڈے کو اٹیک ہوتا ہے، اس سے 2 دن پہلے فلسطینی مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا، مسجد کے باقاعدہ شیشوں کو، اس کی کھڑکیوں کو بھی توڑا گیا تھا. وہ کسی من چلے نے بلکہ لکھا بھی، اس نے کہا دیکھو جی، اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جناح ہاؤس، جو کبھی بھی نہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا نہ فاطمہ جناح کو ملا، اس کے لیے اتنا بڑا مہم کر سکتی ہے، تو مسجد اقصیٰ کے اگر شیشے ٹوٹتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو وہ قبلہ اول ہے، اور وہ جگہ تو آف کورس ورشپ کے لیے، دیٹ از کہ یہودی آ کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں. ایک ملاقات کی طرف بھی لے کے جانا ہے. فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کیا گیا، ان کے گھروں سے محروم کیا گیا، جبکہ انہیں ظلم، بلا وجہ گرفتاریاں اور اجتماعی سزاؤں کا نشانہ بھی بنایا گیا، پورے کے پورے محلوں کو ان کے مسمار کر دیا گیا. غزہ کے 20 لاکھ سے زائد رہائشی 16 سال سے اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ ناکہ بندی اور ظالمانہ پابندیوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. بلکہ میری نظر سے گزرا، فلسطین کے لوگ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہم روز کی 6 نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں 6ٹی نماز ہماری جنازوں کی ہوتی ہے، اور ایک ایک جنازے میں بہت سے لوگ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں، یا ایک ایک نماز کے بیچ میں بے شمار جنازے شامل ہوا کرتے ہیں. یہ 70 سال کی ناانصافیوں کی تاریخ ہے. فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر جنگ کا آغاز کر دیا گیا تھا. بہرحال اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ، ڈونلڈ ٹرمپ کہا کرتے تھے اقوام متحدہ کی اور نیٹو کی میں ضرورت ہی نہیں ہے. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چیف نے اسرائیل کے محاصرے کو بین الاقوامی انسانی حقوق قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا. آج تک کون سی چیز تھی جو مسلمانوں کے اگینسٹ تھی اور فلسطین کے اگینسٹ تھی جس کو امپلیمنٹ کر سکا یونائٹڈ نیشنز؟ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جب غزہ کے محاصرے کو غیر قانونی قرار دیا، غزہ کے لیے بجلی، پانی. آپ امیجن کیجئے گا 21st century میں آپ ایک علاقے کے لوگوں کو ان کی زندگی کی ضروریات سے محروم کر دیں، جس میں بجلی، پانی، خوراک، ہسپتال میں پریگننٹ وومن اور ایک بہت بڑی تعداد پریگننٹ وومن کی، بوڑھے لوگ، بچے. میں عورتوں کے ریپ کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی، میں لوگوں کی شہادتوں کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ نے بیمار، لاچار ان لوگوں کو بھی پابند کر دیا. ہسپتالوں کو بجلی فراہم نہیں کی گئی جہاں پہ کہ لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر موجود تھے. اس المیے میں بین الاقوامی برادری کا مکمل طور پر ہاتھ ہے فلسطینیوں کی حالت اظہار کو مکمل طور پر نظر کرنے کا. مغربی میڈیا اس موقف کی غیر مشروع حمایت کر رہا ہے. اور اگین میں اس وقت آج پروگرام میں دوسری بار اس بات کو کرتی ہوں. یقیناً آپ کی نظر سے وہ کلپ بھی گزرا ہوگا جس کلپ میں سی این این اپنے دو نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں اٹ واز اے مسٹیک بائی دی پروڈیوسر اور جو بھی ان کو انسٹرکشن دے رہا تھا. اوکے یو نو وٹ پوز پوز حماس از اٹیکنگ پوز ہی ڈڈ ناٹ نو دیٹ ہز مائک واز آن. کوئی بھی ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا. ہسپتالوں پہ اٹیک کی بات کر لیں آپ, جس دن آپ رشیا کو بلیم کر رہے تھے تو پورا کا پورا سی این این کا میڈیا بول رہا تھا, آج پورا کا پورا سی این این کا میڈیا کہاں پہ. That is the reason I always say having your media makes a huge difference. کہتے ہیں کہ جس دوران اسرائیلی بمباری سے پوری کی پوری آبادیاں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھی, آرگنائزیشنز آف اسلامک کارپوریشن او آئی سی نے بیان جاری کیا جس میں فلسطینی عوام پر اسرائیل کی عسکری جارحیت کی مذمت کی گئی تھی اور کہا گیا کہ او آئی سی نے بھی آج تک اپنے رول کو اتنے اچھے طریقے سے ادا کیا نہیں ہے, مگر اس بار آئی بلیو سو کہ مسلم کنٹریز نے سٹینڈ لیا ہے, جس میں محمد بن سلمان ایم بی ایس جو ہیں ان کو ناپسند بھی کیا گیا کہ وہ ڈبل پالیسی کھیل رہے ہیں. بٹ ہی از اے ویری اسمارٹ, سعودی عربیہ کو ایک عرصے کے بعد ایک اسمارٹ لیڈر ملنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے انڈیا میں جا کے G20 میں اس نے نئی راہداری کا ایم او یو بھی سائن کر لیا, بٹ ہی از ناٹ گونا ڈو اٹ. وہ شخص جس نے چائنا سے ہاتھ ملا کے ایران تک سے ملاقات کر لی, ایران کا جو فورن سیکرٹری ہے وزیر خارجہ وہ سعودی عربیہ بھی پہنچا, بلکہ اس نے سعودی عربیہ کی ریکویسٹ کے اوپر اپنے سٹے کو بھی ایکسٹینڈ کیا. تو کیسے مغرب اس بات پہ یقین کر لے گا کہ محمد بن سلمان ان کی باتوں کے مطابق چلیں گے. نارملائزیشن کی پالیسی کے سبب اسرائیل کو حوصلہ ملا ہے کہ آزادانہ طور پر غزہ میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اب میں دیکھتی ہوں دنیا کا کون سا ملک اٹھتا ہے جو اس کے بارے میں بات کرتا ہے. آج تک وہ کبھی بھی کوئی بات کو امپلیمنٹ کروا نہ سکے. 8 اکتوبر کو حالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے یونائٹیڈ نیشن کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا اور آپ کو پتا دیر تک یہ جاری رہا, بند دروازوں کے پیچھے جاری رہا. روسی نمائندے نے جنگ بندی اور بامانی مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا لیکن کسی کے کام نہ آیا. 13 اکتوبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں شدید اختلافات دیکھے گئے. روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی تجویز دی, شہریوں کو تحفظ پر زور دیا. اس قرارداد کو 3 یعنی امریکہ, برطانیہ, فرانس کی جانب سے کوئی توجہ نہ مل سکی. اور اس پورے کے پورے فساد کو چاہا ہی کس نے تھا؟ امریکہ, برطانیہ اور فرانس. یہ سیٹلمنٹس لے کے کون آیا تھا؟ برطانیہ اور فرانس. آج امریکہ کا انٹرسٹ ہے بیکوز یونی پاور ہونے کی وجہ سے امریکہ ہولڈز دا ہول پاور. ملیا لودھی کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں اقوام متحدہ کسی معاملے کو سلجھانے میں ناکام رہی ہو. مسئلہ کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, اور لیٹس سی کہ آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پروگرام اسی طرح سے آپ سنتے رہیے گا. میں کوئکلی آپ کی ایک ملاقات کرواؤں گی. ہمارے ساتھ ہے کوئی؟ میں آپ کی کوئکلی ملاقات کرواؤں گی, پہلا والا نمبر, ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر سے. ایک چیز, دو ریاستی مسئلے کے بارے میں آپ نے ضرور کہا ہوگا, مگر اب فلسطین نے دا فرسٹ نمبر ڈائل فرام ہیئر. فلسطین نے, اسرائیل نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ دو ریاستیں نہیں چل سکتی. وی ٹرائیڈ, اب دو ریاستیں نہیں چل سکتی. لیٹس سی ہاؤ تھنگ سیٹل. سنتے رہے پروگرام اسی طرح سے. میں آپ کے ساتھ عارف احمد ظفر. شکریہ ہمارے اسپانسرز کا جن کے توسط سے یہ میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اور 5:30 بجے میرے ساتھ میری جگہ کو حاصل کریں گی عامر اور شازیہ صاحبہ, اور جو نیوز کو کور کریں گے انٹرنیشنل نیوز کو. اس کے علاوہ عامر بھی یہاں پہ ہوں گے. 6 بجے ہم کرکٹ کے حوالے سے یہی لوگ کور کریں گے, اور آف کورس کرکٹ का मुकाबला कैसे हो रहा है, और अब क्रिकेट ने सुना बसात को थोड़ा सा चेंज किया है, इसी के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्सर्स का जब मैं जिक्र करती हूँ तो मैं जिक्र करना चाहती हूँ राजा बादशाह का। राजा बादशाह अगर ऑल स्टेट इंश्योरेंस के साथ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनसे रब्ता कर लीजिएगा। राजा बादशाह 290-290-3773-290-3773 ऑल स्टेट के साथ हैं। अगर आप एक गाड़ी और दो घरों के मालिक या एक घर और दो गाड़ियों के मालिक हैं तो आप साल का तकरीबन $1775 $25 काट $1800 बचत कर सकते हैं। राजा बादशाह को कॉल करें, ऑल स्टेट के साथ हैं, 6472903773 उनका नंबर है। हमारे आज के प्रोग्राम को मोमिन हलाल मीट ने भी ताबन दिया, मोमिन हलाल मीट वसीम साहब इसको रन करते हैं, 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर है मोमिन हलाल मीट, आपने जाना ज़रूर है। ये यहीं पे हार्टलैंड टाउन सेंटर के पास, आप समझिए टेरी फॉक्स एंड ड्रीम लैंड का इंटरसेक्शन, नुक्कड़ के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ही आपको मिल जाता है। नाम है इसका मोमिन हलाल सुपरमार्केट, एड्रेस है 1010 ड्रीम क्रेसेंट। अच्छा, यहाँ पे सेल में और भी बहुत सारी, ये पुरानी सेल है जो मैं इन ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे आपको चिकन विंग्स और चिकन थाइस स्पेशल सेल पे मिल रहे हैं। मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसर्स नंबर नोट कर लीजिएगा, 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर, 416-854-8962 मोमिन हलाल मीट, यू कैन नॉट मिस इट, वसीम साहब इसको रन करते हैं। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से जनाब काबले एहतराम डॉक्टर मुजा हैदर मेरे साथ हैं। देखिए साहब, सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करने से बेहतर इस वक्त वो कहते हैं ना सिक्स वॉरफेयर जो है ना, वो यही कि भाई सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के दिमागों को माउफ किया जाए, कहानियां बयान कर दी जाएं। आप यकीन कीजिएगा हकीकत के बारे में बाज़ औक़ात हमको पता भी नहीं होता, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन आपको क्या ईमेल भेज रहा है, मगर टू मीट दोज हु हैव नॉलेज। एक प्रोग्राम हो रहा है जो 23 अक्टूबर को हो रहा है, और ये प्रोग्राम में पाकिस्तान से प्रोफेसर अकबर जैदी पीएचडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कराची से आप खास तौर पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। डॉक्टर मुर्ता हैदर ने मुझे खाम का फंसा दिया, उसमें ना भाई असी सादे जे पाकिस्तानी हाँ, असी पुठे काम कर सकते हैं, बहुत सोने कर सकते हैं, पर टेक्निकल असी नहीं है। तुसी इत्थे यूआरएल एड्रेस ही अटैच करता, हूँ मैं कितने अटैच करा, फेसबुक ने साड़ी फेसबुक बंद कराती है, वैबसाइट जो तो मेरा ख्याल है पता नहीं इन्होंने जोड़िया कि नहीं जोड़िया, आई डोंट नो। तो ये डॉक्टर प्रोफेसर साहब तशरीफ ला रहे हैं 23 को, इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री इवेंट। वो कहते हैं 1960 में पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता था, यानी आपकी पीआईए से भी मदद मांग रहे थे, आप जर्मनी की भी मदद कर रहे थे, इधर पैसा दे उधर, फिर की हो गया, ऑल ऑफ सडन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस फेडरेशन, मेरे से आपसे मुलाकात करेंगे, इसकी कोई टिकट नहीं है, नो टिकट व्हाटसोएवर। कॉल कैसे करना, इन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीका बता दिया। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम सलाम।
अब कहाँ पे ये यूआरएल एड्रेस जो है मैं डालूं कि लोग क्लिक करें और रजिस्टर, मैं अपने आप को नहीं अभी तक रजिस्टर करा सके।
नहीं नहीं, रजिस्टर तो करना चाहें तो कर ले, लेकिन वो अगर आना चाहें तो बसत खुशी, इसमें कोई फी नहीं है और ये लेक्चर है यूनिवर्सिटी में।
डॉक्टर साहब आपको बताना तो है, ये ना हो कि 100 बंदों की कैपेसिटी है, 500 बंदा उठे आ जाए।
नहीं, यूनिवर्सिटी में 500 आ जाए, 5000 आ जाए, बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
देखा ना, आपसे बात करने का कोई फायदा तो हो गया ना।
जी जी,
23 को ये प्रोग्राम है टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, शाम को 6 बजे,
नहीं 4 बजे,
हाँ 4 बजे, 4 से लेके 6 बजे तक।
जी
चार, मेरे को पता भी है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नजर मेरी कमजोर हो गई है, बस जी लाठी की कसर रह गई है, منڈے کا دن بنتا ہے میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی, اور اگر آپ یونیورسٹی میں, اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں ہیں تو یو مسٹ گو دیئر, یور پریزنس میک. ڈاکٹر صاحب آپ کوشچن آنسر کا سیشن بھی کریں گے اس میں؟
جی بالکل, منڈے کو 23 اکتوبر کو 4 بجے کی لیکچر ہے. ڈاکٹر زیبی جو ہیں وہ بہت نامی گرامی اکانومسٹ ہیں, اور انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی, جو تقریباً ہر اس شخص کو پڑھنی پڑتی ہے کہ جس نے یا تو پاکستان کی اکنامکس پہ ریسرچ کی ہو یا اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا ہو, وہ لازماً پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایشوز ان پاکستان اکانومی از ون دیٹ ایکسپلینز یہ پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے تو کیوں چل رہی ہو, جب نہیں چلتی تو کیا وجوہات ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن میں ڈنڈا سب وے اسٹیشن سے منسلک ہماری بلڈنگ ہے, 55 ڈنڈا اسٹریٹ ویسٹ پہ, نیچے کینیڈین ٹائر ہے, اوپر اسکول آف بزنس ہے. تو وہ کسی آ جائیں اور مطلب خوشی 4 بجے ہم شروع کریں گے یہ لیکچر, اور اس کے لیکچر کے بعد جب ڈاکٹر زیدی صاحب بتا چکے ہوں تو پھر اس کے بعد آدھا ایک گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں سے سوال جواب ہوگا کہ بھائی اچھا ایسا نہیں تو ایسا, فلاں حکومت نے یہ کیا, فلاں حکومت نے یہ کیا, یا یہ کہ فلاں ملک نے یہ اس طرح ترقی کر دی یا نہیں. وہ تمام آپ کے جو مفروضات ہیں جو آپ کے ذہن میں تھا کہ پاکستان کی ترقی ہوئی تو کیوں ہوئی اور نہیں ہوئی تو کیوں ہوئی, تو ان مفروضات کے بارے میں اگر آپ واقعتاً کوئی تفصیل جاننا چاہیں تو اکبر زیدی صاحب سے آپ اس دن آ کر سن سکیں.
مایوس شیخ صاحب آپ کو تو ضرور جانا چاہیے 23 تاریخ کو, آپ کو تو ضرور جانا چاہیے, آپ بڑا کچھ لکھتے ہیں. اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے. 23 تاریخ کو شام 4 سے 6 کے درمیان ڈاؤن ٹاؤن, اور آپ کو گاڑی لے کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکل سب وے اسٹیشن کے اوپر رائٹ.
جی بالکل ملک ہے وہ, جو ڈنڈا سب وے اسٹیشن ہے اس سے تو بساؤ کا جن کو رستہ تو نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اب سب وے سے اترے اور ساتھ ہی ایٹن سینٹر سے جڑا ہوا ہے یہ ہماری جو بلڈنگ ہے,
ہم بھی ٹرین میں آئیں گے ڈاکٹر صاحب, چوٹا بھی لے لیں گے, ہم دنیا بھی دیکھ لیں گے,
دو سیٹ پہ اتر کے پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں.
23 کو اور ٹیڈ روجرز اسکول آف مینجمنٹ شام کو 4 سے 6 کے درمیان, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب روم نمبر 3,
جی روم نمبر ہے جو اس پہ لکھا ہونا چاہیے
3129 9th floor,
جی 9th floor پہ بالکل
9th floor پہ آپ نے جانا ہے, دا روجرز اسکول آف مینجمنٹ 55.
وہاں بلڈنگ کی انٹرنس پہ لابی پہ ہمارے اسٹوڈینٹس کھڑے ہوں گے, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہاں جانا ہے.
پروفیسر اکبر زیدی آپ, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ضرور جائیے گا. یہ جو واٹس ایپ کے پھیروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا, یہ سینہ گزٹ سے نکل کے پرسنلی جا کے ملیے, اگر آپ کے دماغ میں سوال ہے سوال پوچھیے گا آپ.
بالکل, اور یہ بڑا ضروری یہ ہے کہ دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر گفت و شنید کرتے ہیں, اب تو ہر آدمی یوٹیوبر ہے تو ان سے علم تو ملتا نہیں لیکن شبہات اور شکوک مل جاتے ہیں. تو اگر واقعتاً اگر آپ نے علمی گفتگو سننی ہے اور واقعتاً اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے 20 کروڑ لوگوں کا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا اور کیسے کرے گا, تو ضرور ہے. مطلب ایک دفعہ موقع مل رہا ہے, روز روز نہیں ملتا کہ کبھی کوئی صاحب علم شخص کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کی جائے, کچھ سنا جائے, کچھ سیکھا جائے, تو یہ بڑا اچھا نادر موقع ہے, ضرور تشریف لائیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا حیدر ٹیڈ روجر اسکول آف مینجمنٹ سے. ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑی کہانیاں سنوں گی. وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ بڑی مزے کی لکھتے ہیں. وہ ایک ٹیچر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کی اجازت سے ان پیپرز میں سے نکل ماری, دیکھا سوال نامہ تھا, ایک شعر تھا, بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا یہ اہل کرم دیکھتے ہیں. اب تو پاکستان میں تشریح اور وہ آیا کرتی ہوتی تھی, تو وہ اسٹوڈنٹ میرے جیسا نلائق بالکل فلیٹ پوئٹری میں کہتا ہے اس شعر میں مستنصر حسین تاڑر نے بتانے کی کوشش کیا, انہوں نے ایک دن سوچا کیوں نہ فقیر بن کر پیسہ کمایا جائے, لہٰذا وہ کچھ گول پکڑ کر چونک میں کھڑے ہو گئے. اسی چونک میں ایک مداری اہل کرم کا تماشا کر رہا تھا, شاعر کو تماشا اتنا پسند آیا کہ بھیک مانگنے کی بجائے وہ تماشا دیکھنے لگ گیا, اور یوں وہ اس دن کچھ بھی نہ کما سکا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر مرزا حیدر سے ہم نے آپ کی بات کرائی. شازیہ جی ول بی ان دا آفس اینی منٹ ٹو کور نیوز, اسٹے ٹیونڈ پلیز. اب کوئی بھی نہیں آئے گا, اب کوئی بھی نہیں.
مائک
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747171.
جسٹن ٹروڈو تہاڈے آنڈ گوانڈ چ کریک اتے کوکین دے کاروبار نو قانونی بنا رہے ہن, اسی کر کے تہانوں اپنے آلے دوالے جرم اتے مجرم تے چوری چکاری نظر آ رہی ہے. پیئر پولیور انہاں سارے نشیاں دی فروخت تے پابندی لاؤن گے اتے نشیاں والے مریضاں دے علاج دا انتظام کرن گے تے دوشیاں نو جیل بھیجن گے. دس میسج از براٹ ٹو یو بائی پیئر پولیور اینڈ کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا.
ریئل اسٹیٹ دی دنیا وچ تھوڑی کامیابی ایگزیکٹو ہومز ریئلٹی, جتھے تسی 1.5 لاکھ تو 2 لاکھ سال دا کما سکدے ہو. اس تو علاوہ فری بائر اینڈ سیلر لیڈز, وی آئی پی ایکسس ٹو پری کنسٹرکشن پروجیکٹس, ون آن ون سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینٹرشپ, ٹیچ اینڈ ٹرین پروگرام, سٹیٹ آف آرٹ ماڈرن آفس وتھ پرائیویٹ روم, ان ہاؤس مارگیج اینڈ لائرز ٹیم, ان ہاؤس پروجیکٹس انویسٹمنٹ اپرچونٹی. پھر دیر کا دی, آؤ تے جوائن کرو ایگزیکٹو ہومز ریئلٹی یا کال کرو 905-890-1300 یا وزٹ کرو ehrb.ca.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو, نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660. کوئک ٹرک لیو .com.
سٹی آف برامٹن گرو گرین ٹیم چاہتی ہے کہ کمیونٹی ماحولیاتی اقدامات کی وسیع رینج کے بارے میں جانیں, جیسے گاربیج کی صفائی, کمیونٹی میں پودا لگانے کی تقریبات, کمیونٹی باغبانی اور بیجوں کا اشتراک, موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے لچک پیدا کرنا اور گھر میں توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانا, طوفان کے پانی کے انتظام کے پروگرام اور طوفان کے پانی کے تالاب کی حفاظت, سیلاب سے بچاؤ اور بحالی اور عوامی آرٹ پروجیکٹ پر وسائل اور سائیکلنگ اور الیکٹرک اسکوٹر پروگرام اور دیگر پائیدار نقل و حمل کے اقدامات. مزید جاننے کے لیے brampton.ca/growgreen. سٹی آف برامٹن آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ آن لائن شاپنگ کے دوران سیف رہیں اور کلک کرنے سے پہلے سوچیں. جعلی اسکیمز میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو آپ کے بینک, حکومت یا فیملی فرینڈز ہونے کا بہانہ بناتے ہیں اور ذاتی معلومات جیسے کہ کریڈٹ کارڈ نمبر یا پاسورڈ ٹیکس میسیجز یا ای میل کے ذریعے مانگتے ہیں. ان پیغامات سے محتاط رہیں جس میں لنک یا اٹیچمنٹ شامل ہو, اسپیلنگ مسٹیک ہو, ذاتی معلومات مانگے یا آپ سے کوئی کام جلدی میں کروائیں. جب شک ہو تو ذاتی معلومات شیئر نہ کریں, پیغام کی تحقیقی ہونے کی تصدیق کریں, فرد یا ادارے کو کال کریں.
اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے رابطہ کیجیے آپ کی اپنی ڈاکٹر نازیہ رحمان. لیزر ٹوتھ وائٹنگ, روٹ کینال ٹریٹمنٹ, ڈینٹل امپلانٹس,
فری ڈینٹل ٹریٹمنٹ فار کڈز, ہیلتھی اسمائلز انٹیریو کے تحت ڈینٹسٹری آن مسز ساگا, 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ, یونٹ 104, مسز ساگا روڈ اینڈ فائنینشل ڈرائیو.
کال کیجیے ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100. کنسلٹیشن ایبسولیوٹلی فار فری. ڈینٹسٹری آن مسز ساگا.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں اور ای آواز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست یس فرینڈ انگلش میں عامر احمد, اور پائلٹ چینج ہو گئے ہیں جی بالکل. اب جو ہے وہ A380 آ گئی ہے, پہلے PK777 تھا, اب جو ہے ایک A380. آپ کو پتا نا سب سے اس سے بیسٹ آج تک جہاز بنا ہی نہیں ہے. पैसेंजर A380 आ गए और A380 ने किया आते ही शटर ऑन किया, क्लिनिक की सफाई की है मैंने थोड़ी देर पहले आते, दवाइयाँ वाइयाँ सारी चेक की हैं और डॉक्टर साहब आके अभी मेरे सामने बैठे, तो उनको वेलकम कर लेने प्रोग्राम में। सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, शाजिया मलिक साहब कैसे हैं?
सलाम, आज तो फिर दिल मिले हुए हैं, नीले नीले
तेरी खैर, ये कैसे हो गया,
क्या चक्कर चल रहा है आमिर? आमिर मुझे
साजिश है, यहूदी साजिश है?
नो नो नो, ये तुम्हारी साजिश है, तुम जब भी मेरा फोन उठाते हो ना मैं तुम्हें कहती हूँ आमिर को ये चीज फिक्स कर दो, ये तुम जैसे ही मेरा फोन उठाते हो उसके अंदर तुम जो है पेगासस डाल देते हो, बस तुम फिर मुझे मॉनिटर करते रहते हो कि आज ये क्या कर रही है, किधर जा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है।
मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं हुआ।
अच्छा आइडिया नहीं हुआ, पेगासस से तुम्हें डाला मेरे फोन के अंदर है जी, तो आइडिया कैसे नहीं हुआ?
नहीं बताने की बातें होती हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा,
लोग मेरे मेरे सिस्टम में
वो जैसे मजदूर कहते हैं छप्पड़ की बातें,
छप्पड़ की बातें, छप्पड़ की बातें, छप्पड़ में क्या?
अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ये होती क्या छप्पड़ की बात, मुझे जरा एक्सप्लेन कर ही दो। जैसे वो हम पंजाबी कहते हैं ना चक दे फट्टे, आज तक पता नहीं चला कि वो फट्टे उठाने किसने हैं और उनको रखना किधर है
और ये है किधर
और ये है किधर,
लेकिन बस चक दे,
बस चक दे। उसी तरह मैं तुमसे आज पूछना चाहती हूँ ये छप्पर है कहाँ और इसकी बातें कौन करता है और कैसी होती है?
ये पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है।
अच्छा अच्छा,
छप्पड़ वर्ड।
अच्छा छप्पड़,
यार आजा छप्पड़ में आजा।
अच्छा छप्पड़ गया,
तुझे चल छप्पड़ में चलते।
अच्छा क्या है ये,
इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना कम अज कम लगेगा एक प्रोग्राम।
अच्छा अच्छा,
और जो कराची में रहते हैं और
कराची
उर्दू बोलने वाले,
अच्छा अच्छा
छप्पड़ वाले,
हाँ
वो आपको जो है ना कॉल करके खुद बताएंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो छप्पड़ तो नहीं जानते एमक्यूएम पहले कंबल फुट करते थे। देखें, खांसी संभाले, खांसी संभाले, देखें
देखें आप ऐसी बातें ना करें।
अच्छा अच्छा,
ये जो है प्रोग्राम जो स्टार्ट पार्ट होता है ये गैर सियासी है।
अच्छा अच्छा,
और
नहीं हम तो अभी सियासत पे गर्मा गर्म जो है, तुम खुद ही कहते हो, तुम तो रोज कहते हो पखदियां खबरां, और ये तो पखदियां खबरां शुरू हो रही
है, तो हवाई फुस है अपनी खबरें फुस है।
वो तुम इतने बुजदिल हो आमिर, मैं तो समझा नहीं थे, मर्द बनो, मर्द बड़े हो और मर्द मर्द बनो,
देखें
बड़ा और मर्द बड़ा।
अब मैं ये मैं क्या बोलूं, ये कुछ होते हैं मसाइल।
अच्छा अच्छा, मसाइल आदमी के भी। अच्छा खास तौर पे तुम्हारे जैसे
जो मेरे जैसे मासूम और
मासूम और खूबसूरत और शादीशुदा और कराची का है,
कराची का।
तुम्हारे तो एक लंबी लिस्ट है मासूमियत की।
मसला ही होता है कि हमें आप तो
निकल जाएंगे,
आप जो है यूएई भी उतर जाएंगी है और कैपिटल उतरती है सीधा इस्लामाबाद,
हाँ जी
कराची जाना होता है।
चलो तुम्हारी जान छोड़ देते हैं जी,
और पगदी खबरें जो हैं वो शुरू करें, और आज हमारे साथ जो हैं वो साद बिन जफर, तमाम सामीन जो हमें जुड़े अभी जुड़े उनको इन्फॉर्मेशन ये बता दें कि आज हमारे साथ साद बिन जफर स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में जुड़ेंगे।
हाँ, और वो हैं कैप्टन हमारी,
कैप्टन है
कनेडा की क्रिकेट,
क्रिकेट कनेडा,
कनेडा की क्रिकेट टीम के।
ओ अच्छा, मैं समझा हॉकी टीम के।
नहीं, तुम अंग्रेजी अपनी ठीक करो, कनाडा नहीं होता कनेडा होता है, पहले कनेडा सीखो,
कनेडा।
हाँ हाँ, और क्रिकेट नहीं होता क्रिकेट होता है,
क्रिकेट।
हाँ सीखो, सही सीखो आमिर,
सीख गया मैं।
जैसे माजिद भाई ने मेरे से क्लासें ली और वो ठीक हो गया ना,
जी जी।
अब तुम भी मेरे से क्लासें,
इसीलिए उनको जो है वो
हाँ थोड़ा आराम दिया है, हाँ वो रेस्ट पे आजकल। तुम मेरे से अंग्रेजी
नहीं, बिल्कुल। अच्छा चलो जी, गर्मा गर्म खबरें।
ओके जनाब, गर्मा गर्म खबरें शुरू करने लगे हैं हम, और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इकरॉस, शरिया कंप्लायंट जो है वो सर्विसेज देते हैं, तो अगर आपको भी शरिया कंप्लायंट सर्विसेज या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं हलाल सर्विसेज अगर आपको चाहिए, अगर आपको अपना घर लेना है और रिबा फ्री आपको लेना है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं रिबा को, तो आप उसके लिए अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज के ऊपर, वहां पे सुल्तान भाई होते हैं 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर होते हैं, वहां पे आपको बहुत ही प्यारी शैंपेन कलर के जो अप्लायंसेज हैं वो मिल सकते हैं, तो आप सुल्तान भाई से संपर्क करें। इसके अलावा जी आप उनको फोन भी कर सकते हैं एट 905-450-2828, और नानन कबोब, अगर आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है तो आप उनके पास जाएं, और वो आपको पता ही है कि अब नई एक लोकेशन उनकी आ गई है, बड़ा जबरदस्त एम्बियंस है नई जो उनकी लोकेशन पे, और अंदर बैठ के भी आप खा सकते हैं और आप बाहर भी यानी टेक अवे भी करा सकते हैं। इनका लोकेशन है 5042 सैटेलाइट ड्राइव, और इनका नंबर है 905-282-9797। ओके जी, हम खबरें शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलेनी जोली, उनके साथ मुलाकातें आजकल हो रही हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हैं वॉल्कन टर्क, उनकी हो रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी तारीफ करते हैं कनाडा की, और कनाडा का जब भी नाम आता है तो यह कहा जाता है कि वो बड़ा बीकन है, इट स्टैंड्स ऑन राइट वैल्यूज एंड ऑल दैट। तो अब कनाडा चूंकि कैंपेन कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का काउंसिल ज्वाइन करना चाहता है फ्रॉम 2028 से 2030, तो उसके ऊपर टर्क साहब ने कहा जी कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, और ये जो आपकी रिकमेंडेशन आई थी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की ऑन रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिसमें कि आपको कहा गया था 94 आपको कहा गया था कि एक्शन को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये जिसके बारे में कहा गया था कल्चर ऑफ जीनोसाइड, तो ये 2015 में आई थी, तो उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कैनेडा अपनी गलतियों को जो है वो समझता है और उनको सुधारता है, विच इज वेरी गुड, लेकिन फिर भी जो है लिबरल गवर्नमेंट को 7 साल लग गए इस रिपोर्ट के आने के बाद भी टू टेबल लेजिस्लेशन, और के एक ऑफिशियल बॉडी बनाई जाए जो इन तमाम चीजों को मॉनिटर करे, और जो बिल लाया गया था टू नेशनल काउंसिल वो अभी भी स्टडी किया जा रहा है और उसको नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि आप इन तमाम इश्यूज को जरा स्टडी करें और इनके ऊपर काम करें और एड्रेस करें ये सारे इश्यूज को, तो फिर आपके लिए जो है अच्छा होगा, आपके लिए लाइन साफ होगी, यानी कि आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जा सकते हैं। लेजर पोल जी एक हुआ है, बल्कि 2 पोल्स हुए हैं, एक लेजर पोल हुआ है और इक्सॉस रिसर्च का हुआ है। इसके अंदर 62% जो कनेडियंस हैं वो कह रहे हैं कि पीस, लास्टिंग पीस पॉसिबल ही नहीं है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। 155th सिर्फ लोग कहते हैं कि ये पीस जो है ये पीसफुल सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। ये लेजर पोल ने इन कोलेबोरेशन विद एसोसिएशन फॉर कनेडियन स्टडीज के साथ ये किया था, और इसमें 1548 जो लोग थे उनसे बात की थी बिटवीन अक्टूबर 13 टू 15, और इससे पहले जो इक्सॉस रिसर्च आई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि 48% एज 18 टू 34 जो है वो समझते हैं कि इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, और 64% ऑफ एनडीपी सपोर्टर्स जो है वो समझते हैं कि इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट की तरह बिहेव कर रही है, 53% ऑफ ब्लॉक क्यूबेकवा सपोर्टर्स समझते हैं इट इज एक्टिंग लाइक अपार्थाइड, 33% ऑफ लिबरल्स थिंक द सेम वे, इसके अलावा 0% ऑफ एनडीपी ब्लॉक क्यूबेकवा एंड जीपीसी सपोर्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि इसराइल के अंदर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 27% ऑफ सीपीसी सपोर्टर्स और 8% ऑफ लिबरल सिर्फ व्यू करते हैं कि इसराइल जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो अब आप सोच ही लें कि लोग ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं समझते हैं जो कुछ इसराइल के अंदर चल रहा है। हेड ऑफ द मार्कम पब्लिक लाइब्रेरी जो है कैथरीन बिस, उन्होंने कहा है जी कि जो यहां पे मुस्लिम इस्लामिक हेरिटेज मंथ मनाया जा रहा था, और फिर एक स्टाफर को कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें आई हैं जिसमें कहा गया है कि आप एक कम्युनिटी को फेवर कर रहे हो इसराइल हमास वॉर में, तो तमाम का तमाम कोलैटरल जो है वो नीचे कर लो। इसके ऊपर बात करते हुए कैथरीन बिस ने कहा कि जी हमने ये पहले कहा था हमारी जो एक मीटिंग हुई थी मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टरनून की मीटिंग के बाद हमने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अक्टूबर को हम इस्लामिक हेरिटेज मंथ मनाते हैं, तो इसलिए तमाम का तमाम कोलैटरल जो हमने निकाला था उसको वापस लाने की जरूरत है, और इस वक्त जो है हमारी तमाम लाइब्रेरीज के अंदर ये जो मुस्लिम हेरिटेज की जो चीजें हैं वो सब की सब डिस्प्ले की जा रही हैं। तो आज इसके ऊपर काफी बहस हुई है यहां पे डिफरेंट सर्कल्स जो है कनाडा में, और उन्होंने कहा कि इट मींस कि इस्लामोफोबिया जो है वो अभी भी जिंदा है कनाडा में, हालांकि बार बार गवर्नमेंट जो है वो कहती है उसकी कोई जगह नहीं है कनाडा में, लेकिन फिर भी है। बाइडन साहब जनाब इसराइल पहुंच गए हुए हैं और उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो किया गया है वेलकम। यहां पे इनकी जो मुलाकातें हैं प्राइम मिनिस्टर जो इसराइल के हैं बेंजामिन नतन्याहू के साथ हुई, इन्होंने उनको गले लगा लिया, एम्ब्रेस किया एक दूसरे को। इसके अलावा प्रेसिडेंट आइजक हर्जोग जो थे ये लोग भी, ये दोनों पहुंचे हुए थे बाइडन साहब को रिसीव करने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है टेल अवीव में उसके अंदर, और उन्होंने जो है आइजक हर्जोग के ऑफिस ने कहा जी के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि वी वेलकम द मिस्टर प्रेसिडेंट एंड गॉड ब्लेस यू फॉर प्रोटेक्टिंग द नेशन ऑफ इसराइल। और यहां पे बहुत सारे जिस होटल के अंदर ये टेल अवीव में ठहरे हैं अब जाके सैकड़ों ही यहां पे पुलिस ऑफिसर्स और ट्रुप्स बल्के को बुलाया गया है ताकि इसको सी फ्रंट ये जो होटल है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट यहां पे आए हुए हैं। और एक कॉन्फ्रेंस जो हुई यहां पे उसमें बात करते हुए बाइडन साहब ने कहा कि मैं बड़ा वैसे अफसोस है मुझे कि ये जो गाजा के हॉस्पिटल के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन जो कुछ मुझे बताया गया है और जो कुछ मैंने देखा है मुझे पता है कि ये इसराइल ने नहीं किया किसी और ने किया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है क्योंकि दुनिया हमें बहुत गौर से देख रही है और हमारे जो वैल्यूज हैं इसराइल और यूएस के वो एक जैसे हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो डेमोक्रेसीज हैं उनको वाइब्रेंट रहना चाहिए और बाकी सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज भी हमें बड़े गौर से देख रही हैं। और उन्होंने कहा जी कि बाद में अपने सोशल मीडिया पे बाइडन साहब ने लिखा कि मैंने कुछ टफ क्वेश्चंस जो हैं अपने दोस्त इसराइल से पूछे हैं और मैं चाहता हूं कि हम जो हैं इस तरह का ये बातचीत करते रहें ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा बढ़े ना, इसको कम किया जा सके। इसके अलावा जी बाइडन साहब की गवर्नमेंट ने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स ह्यूमैनिटेरियन एड में इनको ऑफर किए हैं जो कि सपोर्ट करेंगे इमरजेंसी नीड्स यहां पे भी और गाजा के अंदर भी। जॉर्डन जो है जी उसने कैंसिल कर दिया है ये जो समिट होने वाला था जिसमें कि बाइडन साहब इसराइल के बाद जो है जॉर्डन में जा रहे थे और किंग जो जॉर्डन के किंग हैं किंग अब्दुल्ला टू उन्होंने जो है यहां पे एक अपनी जो बयान दी थी उन्होंने कहा था जी कि हम फोर वे समिट करना चाहते हैं ताकि एक तो ना सिर्फ ये कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में पहुंचाई जाए बल्कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी शुरू हो गई और ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। लेकिन जो जॉर्डन की के फॉरेन मिनिस्टर हैं एमन सफादी उन्होंने कहा जी कि जो कुछ कल हुआ है जो मैसेकर इन्होंने पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट इसराइल ने किया है तो उस वक्त तक हम इनसे बात नहीं करेंगे जब तक ये वॉर को एंड नहीं करेंगे और इसराइल की जो मिलिट्री कैंपेन है वो सारे के सारे इलाके को एक अंधेरे में धकेल रही है और इसलिए हम जो इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। अब ये बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक समझा जा रहा है क्योंकि और ये बाइडन साहब का क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पता है अमरीका में इलेक्शन है बहुत बुरी तरह उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये जो फोर डे समिट होनी थी इसके अंदर फोर वे समिट जो होनी थी इसमें बाइडन साहब ने इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी उनके साथ मुलाकात करनी थी और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला के साथ और ये चार लोगों ने करनी थी। तो अब इनसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई आप इलाके में तो गए थे और आपको काम था आपका कि डिफ्यूज करें ये वॉलेटाइल सिचुएशन जो है तो आप तो फेलियर आपका हुआ है आपका तो कोई सक्सेसफुल विजिट नहीं हुआ वहां पर। तो ये इनको काफी क्रिटिसिज्म अब सुनना पड़ेगा घर में भी और घर से बाहर भी यानी कि इन यूएस और यूएस से बाहर भी लोग इनको क्रिटिसाइज करेंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी इनके जो डेमोक्रेट्स हैं जैसे कि राशिदा तालिब जो कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन है कांग्रेस के अंदर वो तो ऑलरेडी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं बाइडन गवर्नमेंट को कि जो ये साथ दे रहे हैं इसराइल का। अभी तक जो इन्होंने अल अहली अरब हॉस्पिटल के अंदर गाजा के अंदर जो अटैक्स किए हैं इसराइल ने उसके अंदर 500 लोग जो हैं पैलेस्टीनियंस उनकी डेथ हो चुकी है और इसके रहते हुए आज दुनिया में बहुत ज्यादा कॉन्डेमनेशन आई है। हम आपको अपने टीवी पे जो देख रहे हैं डिफरेंट पिक्चर्स बताएंगे जो ये इन्होंने अटैक किया है और सारी दुनिया ने इनको बहुत ज्यादा कंडेम किया है। अफ्रीकन यूनियन के चीफ मूसा फकी महमद ने एक्यूज किया है इसराइल को ऑफ वॉर क्राइम्स और उन्होंने कहा कि उनको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं जिसमें कि सैकड़ों लोगों की डेथ हुई है। प्रेसिडेंट जो ब्राजील के हैं लुई इनाशियो लूला डा सिल्वा उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड ट्रेजेडी है और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन की इसमें जरूरत है और फॉरन सीज फायर की तरफ चलें। टूडो साहब का तो हमने आपको कल बयान सुनाई दिया था उन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है कि आप एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करते हैं और ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। चाइना की फॉरन मिनिस्ट्री ने कहा कि वी आर शॉक्ड बाय दिस अटैक और हम इसको कंडेम करते हैं और इमीडिएट सीज फायर की हम गुहार उन्होंने लगाई है। मेडिसन सैन फ्रंटियर ने भी इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया है। प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी जो इजिप्ट के हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो बॉम्बिंग्स हैं हॉस्पिटल पे क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इस वायलेंस को रोकें। प्रेसिडेंट ऑफ ईयू काउंसिल चार्ल्स मिशेल जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि सिविलियंस के ऊपर अटैक जो है वो अगेंस्ट है इंटरनेशनल लॉ के। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड सोली निसीतो ने भी कहा है कि ये इंतहाई रिप्रेंसिबल जो है वो अटैक्स हैं और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए ये वायलेशंस कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने भी इसी तरह की सिमिलर बातें की हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है जी कि हम तो वन डे ऑफ मौनिंग अनाउंस कर रहे हैं और हम इंतहाई ज्यादा इसको मना कर रहे हैं इसराइल और उसके यूएसए एलाइज को कि अगर आपने ये चीजें ना रोकी तो इसका ज्यादा आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इराक के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडनी ने भी इसको कंडेम किया है और इराक में तो आज से 3 दिन का 3 डे मॉर्निंग जो है वो शुरू हो गया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने तो एक तो आपको पता ही है कि एक तो मीटिंग भी कैंसिल की है और उन्होंने कहा जी कि ये मैसेकर है और ये वॉर क्राइम है और इसके ऊपर हमको खामोश नहीं रहना चाहिए। कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी इसको इंतहाई ब्रूटल मैसेकर और हिनस क्राइम अगेंस्ट डिफेंसलेस सिविलियंस कहा है। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको शॉकिंगली डीह्यूमनाइजिंग क्राइम कहा है और उन्होंने कहा जी कि इसराइल अगर कहता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करे करने के लिए कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान जो हैं, उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने सबको कहा है कि ये बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग है और ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। अरब लीग ने आज जो बात करते हुए कहा कि ये किस तरह का पागल दिमाग है कि जो इंटेंशनली एक हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब करता है और डिफेंसलेस इनहैबिटेंट्स जो हैं उनको बॉम्ब करता है। तो हम ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ये वॉर क्राइम्स के अंडर आती हैं और जो भी कोई क्रिमिनल इन एक्शंस के अंदर शामिल है वो बिल्कुल भी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड दे वोंट गेट अवे विद इट। तो ये चीजें जनाब काफी दुनिया में आज ज्यादातर यही गर्म रही, ज्यादातर एडिटोरियल्स भी इसी के ऊपर लिखे गए। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इक्रॉस और आपको पता ही है कि शरिया कंप्लायंट वो फाइनेंसेस लाते हैं और सर्विसेज लाते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं आप उनसे कर सकते हैं और खासतौर पर हमारा जो क्रिकेट का सेगमेंट है उसको इक्रॉस जो है वो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप जरूर इनसे अगर रिबा फ्री आपको सर्विसेज चाहिए तो आप इक्रॉस को कॉन्टैक्ट करें। अच्छा जनाब, आज वैसे तो नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया लेकिन हमारे बीबी जरदारी साहब जो हैं वो एक बात कर रहे थे गैदरिंग से कराची के अंदर और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और यहां पे जो इलेक्शंस हैं उन सबको एक आदमी के लिए जो है वो स्टैंड स्टिल पे लाया गया है। तो जाहिर है कि वो एक आदमी जो है नवाज शरीफ साहब है जो अभी तक लंदन से नहीं आए हैं और उन्होंने ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि फॉरन पोल डेट जो है आप अनाउंस करें, यानी कि इलेक्शन की डेट। और वो कहता है जी कि अगर PPP बिटर पिल लेने के लिए तैयार है और अब 90 डेज से बियॉन्ड चला गया है पीरियड जो कि इलेक्शन का आपको कहा गया था आपने नहीं कराया, तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पीपीपी की इस डिमांड के साथ खड़े रहे कि मुल्क के अंदर फॉरन इलेक्शंस होने चाहिए और डिले जो है वो डिसरिस्पेक्ट आप शो कर रहे हैं वोट को भी और वोटर को भी। और उन्होंने कहा जी कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करने की जरूरत है और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है इसको खत्म करने की जरूरत है। पायन पहले तो तुम अपने वालिद साहब को ना, आसिफ अली जरदारी साहब न, कि पायन तुम जरा पाकिस्तान वास्ते कुछ कम करो कुछ डेवलपमेंट वास्ते, है जी, फिर तुम दूसरिया जरा है वो सबक देना। तुम अपने वाले साहब ने तो कदम किया नहीं कि पायन इतने पैसे आपके पास कहां से आए, ये क्या किया आपने अपने जमाने में, कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरी मां कैसे मरी, उसके ऊपर क्यों नहीं प्रॉपर प्रोब बिठाई गई, वालिद साहब से कोई सवाल नहीं करने, बाकियों से आपने करने हैं, बीबी जरदारी साहब वालिद साहब से भी क्वेश्चन करो। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसने जनाब नोटिस जारी किए हैं नैब को, ये जो दो पिटीशन लेकर आए थे नवाज शरीफ साहब और ये प्रोटेक्टिव बेल में इन एवन फील्ड एंड अल अजीजिया केस में, तो आज इनके जो लॉयर थे वो थे यहां पे मौजूद। और ये जो टू बेंच है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच जो है जिसमें के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, तो ये इनसे बात कर रहे थे इनके जो लॉयर हैं अमजद परवेज से। तो अमजद परवेज साहब ने कहा जी और सबको भी ये प्रोटेक्टिव बेल्स दी गई थी तो ये नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी जा रही। नैब के प्रोसिक्यूटर भी यहां पर थे, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब आ जाए इसके ऊपर जो है। जस्टिस बड़े गुस्से में आ गए, जस्टिस औरंगजेब ने कहा जी अच्छा ठीक है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप ग्रांट करना चाहते हैं प्रोटेक्टिव मेल तो कल फिर ये ना कहना कि जजमेंट जो है वो अब हमें करने दो, तो इसलिए और ये ना कहना कि नैब का जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा ये केसेस, अब ये सारा कुछ जो है फिर कोर्ट को करने दो। तो उनका मतलब था कि प्लीज स्टेप बैक और इसकी जो अब हियरिंग है कल तक यानी थर्सडे तक के लिए एडजर्न की गई है और कल से फिर से ये शुरू होगी। स्पेशल कोर्ट जो है जी उसने अडियाला जेल में जो उसके जो सुपरिंटेंडेंट है उनको फिर से एक दफा कहा है कि इमरान खान साहब की बात जो है उनके जो बेटे हैं उनके साथ आप करवाएं। और आपको पता ही है कि जिस वक्त August 30th में ये अभी अटक जेल में थे तो उस वक्त भी कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा था कि इनके बेटों से इनकी बात कराएं लेकिन इन्होंने कोई भी जो जेल सुपरिटेंडेंट ने नहीं कराया था, तो इनकी जो लीगल टीम है उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था पिटीशन। उन्होंने कहा था जी अभी तक कोर्ट की बात नहीं मानी गई है, तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लास्ट मंथ मान ली थी इनकी पिटीशन कि एक तो इनको अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए फ्रॉम अटक जेल और दूसरा इनकी बात जो है वो करवाई जाए। और इनका जो अभी साइफर केस के अंदर जुडिशियल रिमांड चल रहा है और इनकी जो हो सकता है कि जो हियरिंग का जो सारा कुछ यानी कि जो फाइनल वर्डिक्ट है साइफर केस का वो October 23rd को आ जाए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट भी, तो अब देखने की बात है कि इसके बाद क्या होता है। ISPR ने जनाब आज कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील वेपन सिस्टम और उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए ये हमने टेस्ट किया है कि हम रीवैलिडेट करना चाहते थे इसका डिजाइन, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स, इसकी परफॉर्मेंस, और इवैल्यूएट करना चाहते थे कि ये सिस्टम जो है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर जो आज ये जो इवेंट हो रहा था इसके अंदर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये जो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यहां पे थे। इस मौके के ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने और बाकी जो सर्विसेज चीफ थे उन्होंने इनको जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेज वालों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। पीआईए के तो जनाब पता नहीं हालात क्या हो गए हैं, कोई जमाना था कि पीआईए की तरफ लोग देखते थे, क्या जबरदस्त जो थी फ्लाइट थी इनकी और क्या जबरदस्त एयरलाइन थी, हर 8 मिनट में ये लोग एक नई डेस्टिनेशन को टच करते थे, इनकी एयर होस्टेसेस जो थी उनके कपड़े क्रिश्चियन डियोर वालों ने डिजाइन किए थे, वाह क्या बात थी, नेक्स्ट लेवल ही था। इस वक्त पीआईए के पास जो है फ्यूल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हंसी आएगी आपको भी, मुझे भी आज ये खबर पढ़ के बहुत हंसी आई। एज अ रिजल्ट 24 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं आज फ्यूल ना होने की वजह से और ड्यूज पे ना करने की वजह से जो हैं वो ग्राउंड की गई थी। 12 जो थी वो इंटरनेशनल थी, 13 डोमेस्टिक थी। इसके अलावा आज भी 16 इंटरनेशनल और 8 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं जो जानी थी दुबई, मस्कत, शारजा, अबू धाबी एंड कुवैत, उनको ग्राउंड किया गया था और लेकिन जो पैसेंजर्स थे उनको फिर दूसरी तरफ डायरेक्ट किया गया था और दूसरी फ्लाइट्स में उनको भेजा गया था। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी अजीत डोवाल साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा जी कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा वो बड़ा की जो है ये पार्टनर्स हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, लेकिन जाहिर है कि हमारी कनेक्टिविटी थ्रू पाकिस्तान होगी और चूंकि पाकिस्तान उसकी इजाजत नहीं दे रहा है तो इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी अजीत डोवाल साहब ने आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो इलाके के अंदर टेररिज्म है इसको रोकना चाहिए और अगर चैलेंजेस जो हैं उनको और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमको जाना है तो हमको सारों को मिलकर रहना पड़ेगा और एक कंट्री, नाम तो नहीं लिया उन्होंने बट ऑब्वियस ये कि पाकिस्तान, एक कंट्री जो है वो इसकी चीज की इजाजत नहीं दे रहा है जिससे कि सब लोग सफर करेंगे। हमारे कल्चरल लिंकेजेस हैं और पीपल टू पीपल टाइज हैं सेंट्रल एशिया के साथ, हमको इसकी इजाजत होनी चाहिए। ये आज सेकेंड जो थी मीटिंग हो रही थी इनकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कजाकिस्तान में जहां पे जीत दोवाल साहब बात कर रहे थे, इससे पहले जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी दिसंबर 2022 को। आज राहुल गांधी साहब ने एक दफा फिर से अदानी ग्रुप के मसले जो हैं वो उठाए हैं और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी शाबाशी है इनको, अदानी साहब को, पूरा जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल था आज उन्होंने दिखाया लोगों को और उन्होंने कहा जी कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो बता रहा है कि ये मिस्ट्री क्या है अदानी कोल इंपोर्ट्स की जो कि कॉन्स्टेंटली उनकी दौलत में इजाफा करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इसकी वजह से वो लाते तो सस्ता है कोल इंडोनेशिया से लेकिन फिर उसको बेतहाशा महंगा बना के इंडिया में पेश करते हैं जिसकी के वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसे कमाए हैं एट द ट्यून ऑफ 12,000 करोड़ का फायदा उठा चुके हैं जिसमें कि उन्होंने फ्लीस किया है पुअर लोगों को। तो हम जो हैं इस तरह की हमारी पॉलिसी कभी भी कांग्रेस की नहीं रही तो इस पे सवाल बनता है, इनको पूछना चाहिए कि ये एक आदमी जो है कैसे थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है और पीएम साहब जो है मोदी जी उनकी इनको शाबाशी हासिल है। उन्होंने ये भी बताया कि जी इससे पहले जनवरी में यूएस शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा जी इससे पहले भी इनके ऊपर एलिगेशन आए थे जिसमें कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने क्वेश्चन किया था इनको रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा था जी कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है अदानी ग्रुप। तो आज ये फिर से जो है गर्मा गर्म हो गई है सियासत हिंदुस्तान में भी। और जनाब इजिप्शियन कॉमेडियन जो है बसाम यूसुफ, उनको बुलाया है एक शो के अंदर, पियर्स मॉर्गन ने अपने शो में बुलाया और उन्होंने बेइंतहा बैश किया पियर्स मॉर्गन को, पहली दफा ये बैकफुट पे देखे गए और इन्होंने कहा जी, बसाम यूसुफ ने कहा कि छोड़ें कि मैं पैलेस्टीनियन हूं, छोड़ें कि मैं अमेरिकन हूं, मैं सोचता हूं कि मैं एक इजरायली हूं, मैं ज्यू हूं, तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू साहब से कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं क्या ये ठीक है, क्या जो आपने जुडिशरी के साथ किया है क्या वो ठीक है, क्या जो लोगों को मारना है वो ठीक है, क्या बदले लेने जो है वो ठीक है। और फिर एंड पे इन्होंने कहा जी कि ही इज अ नार्सिसिस्ट साइकोपैथ जो बेंजामिन नतन्याहू साहब हैं। तो ये बहुत ही हार्ड हिटिंग इनका इंटरव्यू था पियर्स मॉर्गन के साथ. उन्होंने कहा जी कि वेस्ट वाले हमेशा इस चीज को एंडोर्स करते हैं, आप लोग रूट प्रॉब्लम पे नहीं जाते हैं कि किस तरह इसराइल जो है वो यहां पे आया है. उन्होंने बार बार कहा कि जी मैं हमास का बिल्कुल साथ नहीं देता हूं, मैं बिल्कुल समझता हूं कि हमास ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो इसराइल कर रहा है क्या आप उसको एंडोर्स करेंगे. पियर्स मॉर्गन ने उसके ऊपर कहा कि मैंने कभी भी इन चीजों को नहीं माना. उसके ऊपर बसाम ने फिर से कहा कि वेस्ट की तो आदत है, जैसे कि आप इराक में चले गए थे और आपने कहा था जी उनके पास तो बड़े वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो फिर वो कहां गए? आप लोग बर्बाद सिर्फ करना जानते हैं, आप लोगों को ठीक करना नहीं आता. पियर्स मॉर्गन ने कहा मैंने हमेशा राइट साइड का साथ दिया है, मैंने हमेशा जो है इराक वॉर को कंडेम किया था और अब भी मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है. बहरहाल ये बड़ी गर्मा गर्म ये बहस थी, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. करण जौहर साहब ने जी अभी रिसेंटली सिल्वर जुबली मनाई है, इनकी जो बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी कुछ कुछ होता है, इसके अंदर बात करते हुए लोगों ने उनसे पूछा कि उसके अंदर सलमान जो था एक कैमियो रोल में आया था तो क्या आपके साथ एक फुल फ्लेश फिल्म कर सकता है. उन्होंने कहा जी कि वो मेरी फैमिली से और मेरे वालिद साहब जो हैं, मेरे वालिद साहब जो हैं यश जौहर, उनके साथ बड़ा प्यार करते थे और जो है वो बड़े क्लोज थे इनके वालिद साहब सलीम साहब से, तो मैं सोचता हूं कि एक मैं फुल फ्लेश फिल्म सलमान के साथ बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता हूं. इसके अलावा करण जौहर साहब ने बताया जी कि जिस वक्त मैंने कुछ कुछ होता है बनाई थी तो यह इतनी बड़ी हिट और मैं अपने ही मुल्क में नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स दी जा रही थी. ये इंटरव्यू दे रहे थे 25th एनिवर्सरी ऑफ कुछ कुछ होता है